राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना, गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियां तुम लुटाना, गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियां तुम लुटाना, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना।
ओम शांति। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना, गुण प्रभु के गुनगुनाना और सबको खुशियां बांटना, ऐसी ही विशेषताओं से संपन्न एक फरिश्ता हमारे बीच में, जिनको हम जानते हैं आदरणीय राजयोगी रामनाथ भाई जी के नाम से। तो ऐसे ही फरिश्ते का आज हम एक हाथ ऊंचा करके आज की सभा में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। आपने ये ज्ञान आज से करीब 44 इयर्स बैक प्राप्त किया था, जब आप कॉलेज एजुकेशन कर रहे थे अपनी। आपने कर्नाटक यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की डिग्री प्राप्त की है। आप धारवाड़ की धरनी से निकले ईश्वर के स्पार्कलिंग डायमंड हैं। और जब आपको ये ज्ञान मिला तो उसमें आपकी रुचि बढ़ी, बहुत अच्छा लगा, दिल को जचा, उसकी गहराई में उतरते गए और मन हुआ कि ऐसे ईश्वरीय कार्य में सारा जीवन समर्पित करके ये संदेश सारी दुनिया को मिलना चाहिए। तो उसी उत्कंठा को लेकर आज से करीब 36 वर्ष पूर्व आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। शुरू से ही आप हेडक्वार्टर माउंट आबू में बेस्ड रहे आज दिन तक, और यहाँ बेस्ड रहकर देश विदेश में सेवाएं देने के लिए आप भ्रमण करते हैं। हमारे विद्यालय की जो रिलीजियस विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, और डेफिनेटली रिलीजियस विंग माना समाज के अंदर धर्मों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले जितने भी हमारे धार्मिक व्यक्तित्व हैं, उन सब के साथ आपका मिलना जुलना होता, और कैसे उनको धार्मिकता और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है ये बताकर धार्मिकता से भी ऊपर उनको उठाते हैं। मुझे याद है कोई मुझे सुना रहा था कि जो बड़े बड़े ये महामंडलेश्वर भी होते हैं ना, वो भी जब हमारे प्रोग्राम में आते हैं और भ्राता जी के सानिध्य में भी रहते हैं और यहाँ पर जो ज्ञान सुनते हैं, तो बाद में वो जाते जाते भी ये कहते हैं पता नहीं आपने हम पर क्या जादू चला दिया। जाने के बाद भी वहां से फोन करते हैं, पता नहीं ऐसा क्या जादू चल गया है कि मैं जो अपनी पूजा पद्धति भी करता हूँ वहां से भी मन बार बार उठ के माउंट आबू की तरफ आ जाता है। तो ऐसी विशेषताओं से संपन्न कि सबके जीवन में जो परिवर्तन लाने के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है, ऐसे हमारे आदरणीय भ्राता रामनाथ जी से हम सुनेंगे कि अपने लौकिक और अलौकिक जीवन में बैलेंस कैसे लाएं। इसके साथ साथ भ्राता जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्लास आरंभ होने से पहले कुछ एक भाई मुझे प्रश्न कर रहे थे कि यहाँ पर सफेद का इम्पोर्टेंस क्यों है, तो जरा इस पर भी आप प्रकाश डालेंगे तो भाई साहब की जो मन का प्रश्न है उसका समाधान हो जाएगा। आदरणीय भ्राता रामनाथ जी।
ओम शांति। सबने खाना खाया, एक खाया कि खिलाया, दो चीज होता है, खाया खिलाया, क्योंकि अभी आप इधर आए हो तो ये रूहानी सत्संग है, आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं। शरीर का हमने आधा कल्प से किया, पूजा किया, व्रत किया, जप किया, हाँ, साधु संत के पास गए, रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, गीता पढ़ी, व्रत सब कुछ किया, आधा कल्प से भगवान को याद किया, उसका फल होगा ना। जो भगवान को हमने इतने आधा कल्प से कुछ प्यार किया, पूजा किया, व्रत किया, उसका ये फल है। धरती पर भी कोई बीज बोलो, उसका भी फल निकलता है, कई फल तुरंत देता है, कई फल, जैसे नारियल का झाड़ है, 5 साल मिनिमम, 10 साल के बाद, है ना, ऐसे भी फल मिलता है। तो ये फल निकलने के लिए इतना समय लग गया, तो वो भगवान आके क्या कहता है, उसने सृष्टि पर गृहस्थ धर्म स्थापन किया था, संन्यास धर्म नहीं, गृहस्थ हमारा सबसे पहले इस सृष्टि पर लक्ष्मी और नारायण, वो भी गृहस्थ थे, स्त्री और पुरुष दोनों थे, लेकिन उनका जीवन और आज भी धरती पर स्त्री और पुरुष दो ही है। अगर आप ब्रह्मांड के अंदर देखो, दो ही शक्तियां हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति 5 तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये 5। इस प्रकृति को कौन उपयोग कर रहा है, किसने शरीर में जन्म लिया, कौन शरीर छोड़ के गया, तो पुरुष आत्मा। जो आज बाबा ने भी मुरली में कहा, समय का वैल्यू है, समय जो गया वो वापस नहीं आता, गया वो, है ना, तो वो समय, समय पर काम करना होता है, टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। तो उस समय को देखते हुए भारत की एक अविनाशी खंड है, एक ही खंड था, उसके बाद बाकी खंड हुआ है, एकदम 5 खंड ने थे इस ब्रह्मांड के अंदर, ये एक ही खंड था भारत, अविनाशी है। और उस अविनाशी खंड के अंदर हर एक मनुष्य आत्मा को इतनी स्वतंत्रता है, किसी भी खंड में किसी को स्वतंत्रता नहीं है, यहां वो स्वतंत्रता, कोई भी धर्म वाला जो भी व्यक्ति जो भी करना चाहे कर सकता है, यही करना चाहिए, यही नहीं करना चाहिए, किसी पर दबाव नहीं है। तब कहा मां, भारत मां कहते हैं, मां के लिए अच्छे बुरे कोई किसी प्रकार के बच्चे, बच्चे तो बच्चे ही है, तो भगवान को मां पिता कहते हैं, सारा विश्व भगवान को बाप कहता है, गॉड फादर। एक ही भारत देश है, वो कहता है भगवान कौन, त्वमेव माताश्च पिता, तुम्हें मां बाप है, मां बाप को बच्चों को जन्म देकर खिलाते पिलाते पढ़ाते बड़ा भी करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी, तब उनको मां बाप कहते हैं। देखो सारे धर्म वाले कितने लोग आए, चले गए, कहां गए वो, आज लेटेस्ट पुटपत्र का सत्य साई बाबा है, उनके अभी भी कितने फॉलोअर्स है, वो अभी भी लेटेस्ट शरीर छोड़ के गए, कहां गए, उनके जो फॉलोअर्स है उनका भी कोई पालना करनी चाहिए ना, कौन करेगा, वो कहां गए। हां, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भगवान कहते हैं, गुलजार ब्रह्मा बाबा के तन में, दादा लेखराज के तन में निराकार परमात्मा आया, उन्होंने आकर, ब्रह्मा ने, दादा लेखराज ने भी शरीर छोड़ा, उसके बाद आज भी अपना तन न होते हुए भी वही निराकार जो 50-60-70 साल पहले जो ज्ञान सुनाया था वो आज भी सुना रहा है। अब वो तन नहीं है तो भी अपने बच्चों की पालना करते हैं, भगवान जन्म देके छोड़ते नहीं है, पालना करते हैं, तब उनको मां बाप कहते हैं। अपना तन नहीं होते हुए गुलजार दादी के तन में हर साल कोई भी धर्मात्मा, कोई भी देवता गया, वापस नहीं आया है। श्री राम गए, श्री कृष्ण गए, बहुत गए, धर्म गुरु नानक देव जी गए, कोई भी कहां गए हो, उनकी जो परिवार है उनकी पालना करना चाहिए ना, उन्होंने जो ज्ञान बीज बोया धर्म स्थापन किया, उनकी पालना कौन करेगा? उसके पीछे क्या है? तब प्रश्न आता है, यहां नहीं, यहां भी ऐसे बाबा भगवान आके ज्ञान से गया नहीं। देखो आज भी गुलजार दादी के तन में आकर आज भी वही ज्ञान सुनाते हैं। ऐसे नहीं जो सुना हुआ पहले वही चल रहा है, नहीं। तब कहते हैं भगवान मां बाप है, भगवान के द्वारा हम कहते हैं हम किसके बच्चे हैं? इस संसार में कोई रावण का बच्चा नहीं है, भगवान के बच्चे हर एक कहता है। तो आप अपने आप से पूछो कि इस संसार में चलते हुए हमारे पूर्वज, हमारे मां बाप कौन थे? उनके जो शिक्षा, उनके शिक्षा पर हम चलते हैं। अगर बच्चा मां बाप के अंगुली पकड़ के चलता है तो उसको कोई चिंता नहीं, निश्चिंत है। काटा है, पत्थर है, मां बाप देखते हैं। अगर बच्चा अकेला रहता है तो उसको सब कुछ अपने आप करना पड़ता है, वो निश्चिंत नहीं रह सकता है। जो आज की दुनिया में शब्द आया, आज से 10-15 साल पहले नहीं था, तनाव। ये टेंशन वर्ड कब से आया? ढूंढो। जब मनुष्य स्वतंत्र अकेला रहने लग गया, परिवार को छोड़कर, मां बाप से दूर होकर, स्थूल रूप में भी सूक्ष्म रूप में भी, दोनों में, स्थूल रूप में भी शरीर में रहते हो तो मां बाप के पास साथ रहते हैं, निश्चिंत है। पिताजी देखता है, माताजी देखता है, सब परिवार में होता है। अकेला है तो सब कुछ आपको करना है। यहां भी भगवान मां बाप को साथ रख के चलते हो, वो कैसे चलना है वो भी बताता हूं। संसार में रहते ग्रस्त में रहो, कर्म करो, तब का धर्म अर्थ कर्म और मोक्ष है। एक ही दिन के अंदर, एक दिन के अंदर है, सवेरे उठते ही कोई जीवन में एक धारणा, धर्म माने हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं, वो कब से आया, कोई एक धारणा होनी चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, मान्यता होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। बच्चा स्कूल में जाता है उसका एक लक्ष्य है, मुझे पास होना है, मुझे फर्स्ट क्लास होना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, कोई लक्ष्य लेके जाता है। तो हमारे जीवन में भी मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है। तब शास्त्रों में भी कहा मानवः मृगः, मनुष्य प्राणी बन गया, अर्थात मनुष्य प्राणी का जीवन नहीं लेता है, शरीर नहीं लेता है, मनुष्य मनुष्य है, उसका जीवन प्राणी जैसा हुआ है। प्राणी को अगर आप दो रोटी दे दो, एक रोटी कल के लिए रखेगा? नहीं। एक मनुष्य को 5 रुपए दे दो, 1 रुपया कल के लिए रखता है। मनुष्य वो जो कल के लिए सोचता है, प्राणी वो जो सिर्फ खाओ पियो मौज करो आज वर्तमान, कल क्या है पता नहीं। आज दुनिया की एक मान्यता हो गई, कल किसने देखा है, ईट ड्रिंक एंड एंजॉय, आज का कल किसने देखा। लेकिन एक चीज याद रखो कि आत्मा जब इस शरीर में जन्म लेती है, आती है, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो जो कर्म करते हो वो आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है। क्या प्रूफ? आज की दुनिया में किसी को कैंसर की बीमारी आती है, 5 साल तक भी कुछ पता नहीं चलता है, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। कैसे कहते हो आप? डॉक्टर एक्सरे निकाल के दिखाता है। यहां भी आपने अंदर क्या क्या भरा हुआ है, कौन सी आत्मा हो? क्योंकि हम कहते हैं देवात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, कौन सी आत्मा हो आप? कैसे पता चलेगा? मुखड़ा देख ले प्राणी, ये मुखड़ा तो आईने में दिखाई देगा। वो मुखड़ा कब देखेंगे? जब आप रात को आंखें बंद करके सोते हो, न देखते हो न सुनते हो, तब स्वप्न दिखाई देते हैं। स्वप्न कहां से आते हैं? कई दिन में ये भाई ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, अंदर जो भरा हुआ आत्मा ने शरीर में आने के बाद जो जो कर्म किए हुए है वो सब अंदर भरा हुआ है, वो स्वप्नों के रूप में दिखाई देता है। और पता चलता है आपके मैंने किया हुआ कर्म है, आप ही दिखाई देता है, मैं कर रहा हूं, मेरे गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ, मेरा जीवन ऐसा हुआ। फिर मन में विचार आते हैं, मन खराब नहीं, मन गलत नहीं सोचता है, अंदर जो भरा वो मन में आता है, मन अशांत नहीं होता है। माइंड इज अ स्पीकर, स्पीकर में आवाज कहां से आया? अपने आप आया, अंदर भरा हुआ है। फिर तीसरा कर्मों के द्वारा दिखाई देता है, गुस्सा निकलता है, किसी को दुख देना, गलत शब्द बोलना, बच्चा जन्मते ही देखो लंगड़ा अंधा काला गोरा गरीब श्रीमंत, ये कौन कर रहा है? हमारे कर्म करते हैं। तो इसलिए आपको संसार में रहो, 8 घंटे कर्म करो, 10 घंटे कर्म करो, लेकिन कर्म करते समय ये 4 बातें याद रखना, धर्म अर्थ कर्म और मोक्ष। कोई धारणा रखो, मैं जो कोई भी सवेरे उठते ही कर्म कर रहा हूं, किसके लिए कर रहे हो? किसी के लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो। किसके लिए नहीं कर रहे हो आप? अपने लिए ही, याद रखो, अपने लिए कर रहा हूं। तो अपने लिए कर्म करते हो तो उसका फल भी, सुख या दुख, अच्छा बुरा कौन भोगेगा? दूसरा कोई भोगेगा? मुझे ही भोगना पड़ेगा। देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। हर कर्म का फल निश्चित है। मुझे पता नहीं था, किसको बताएंगे आप? बॉम्बे में जाओ, कहीं भी कार पार्किंग करो, 2 मिनट के अंदर म्युनिसिपैलिटी वाला ले जाएगा। आप बताओ, मैं मेहमान हूं, मुझे पता नहीं, कोर जाने 5,000 रुपए भरो, पता चल जाएगा, है ना? हर कर्म, अगर आपको मुझे पता नहीं है ये, हाँ कर्मों का फल भोग लो। फिर भी एक दफा हाथ लगाते शौक लगता है, दोबारा हाथ लगाते में सोच समझ, समझ मनुष्य को दी, प्राणी को नहीं है। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ क्यों? उसके पास एक शक्ति एक्स्ट्रा है, बुद्धि, प्राणी के पास नहीं है। मनुष्य को बांध के नहीं रख सकता है। तो बुद्धि से मन में गलत विचार आते हैं, मन चंचल है। मन के बाद हमारे पास एक शक्ति है, उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि को पता है ऐसे सोचेंगे तो ऐसे होगा, किसी को देखकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, करेंगे तो ऐसा होगा, ये समझ है कि नहीं है? किसी को समझ नहीं है? कोई भी चाहता है गुस्सा करना, कोई चाहते हो? हर एक के पास समझ है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है गुस्सा करना, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करने के लिए पावर चाहिए, विल है, विल के अंदर पावर नहीं है। शरीर है, शरीर को 3 दफा खाना खिलाते हो, आत्मा को वीक माइंड और हेल्दी बॉडी। कहते हैं हेल्दी बॉडी के अंदर हेल्दी माइंड होना चाहिए, बैलेंस चाहिए। अभी इम्बैलेंस हो गया, एक सशक्त हो गया और एक वीक हो गया। जो सशक्त है तो मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर अटैक करेगा ना, तब आप कहते हो कि हम चाहते नहीं, फिर भी होता है, ऐसे ही है ना? हम चाहते नहीं तो कौन कर रहा है? न चाहते हुए कौन कर रहा है? आत्मा है, 2 आत्मा तो नहीं है, एक ही है। उसके पास 2 शक्ति है, एक मन और एक बुद्धि। बुद्धि को पता है ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। परिस्थिति आई, व्यक्ति आया, समय आया, हो जाता है। लेकिन वहां व्यक्ति परिस्थिति को देखकर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो उस शक्ति को देने के लिए भगवान इस धरा पर आके कुछ नहीं देता है। शरीर के अंदर बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन। शरीर के हर नस नसों का उसको ज्ञान है, उस शरीर के बीमारी को ठीक करता है। लेकिन इस शरीर में जो रहता है आत्मा, उसकी बीमारी को ठीक करने वाले का नाम भी डॉक्टर है, उसका नाम सुप्रीम सर्जन कहते हैं, उसको कहते हैं ही इज ए प्यूरिफायर। ही कौन? बहुत डॉक्टर्स है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, एलोपैथिक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है। कौन सा डॉक्टर है वो? पतित आत्मा को पावन करने वाला है। और उसका नाम भी है, क्या नाम उस डॉक्टर का? लक्ष्मी ने कभी विष पिया? श्री राम ने विष पिया? कृष्ण ने विष पिया? शिव ने विष पिया है। बच्चों के अंदर जो विष है, दर्द है, दुख देने वाला 5 विकार, वो शिव ने पिया है। तो शिव, भारत में शिव जयंती मनाते हैं। कौन है वो? वो गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, सत्यम शिवम। सत्यम कृष्णम सुंदरम नहीं है, सत्यम रामम सुंदरम नहीं है, सत्यम शिवम सुंदर है वो, सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। तो वो आके एक सिंपल, बच्चे संसार में रहो, सिर्फ मिनिमम 3 काम आप कर सकते हो। सिंपल, गृहस्थ में रहते हुए दोनों का बैलेंस रखना चाहिए, कर्म भी श्रेष्ठ चाहिए। भारत स्वर्ग था, ये नरक किसने बनाया? और किसी ने बनाया? तो इसको फिर से स्वर्ग कौन बनाएगा? ऊपर से उतर के आएगा मॉडल? हमें ही करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे आप? चमत्कार नहीं, कर्मों से, है ना, कर्मेषु कौशल्यम। कहा हमारे हर कर्म नीट क्लीन एक्यूरेट है। आप क्या चाहते हो? अगर आपके घर में माई आती कर्म करने वाली, उसने पोछा ठीक लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाए तो क्या होगा? खाना बनाने वाले कोई आता है, खाना ठीक नहीं बनाया तो क्या होगा? गाड़ी चलाने वाला होता है, गाड़ी ठीक नहीं चलाता है, क्या होगा? कहीं भी जाओ, आप क्या चाहते हो औरों से? कैसे भी कर्म किया तो चलेगा? चलेगा, हाँ चलेगा ना, नहीं चलेगा ना? तो आपने कैसे किया तो चलेगा? आप पूछो अपने आप को, मैं जो कर्म कर रहा हूं, कोई भी काम, क्या वो नीट क्लीन एक्यूरेट है? मेरे कर्मों से औरों को सुख शांति मिलेंगी? हम चाहते औरों से, वी एक्सपेक्ट, इच्छा रखते हैं, इतना ही, दूसरों से चाहते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मुझे भी देखना पड़ेगा ना, मेरे कर्म कैसे हैं? तो मेरे कर्मों से ही इस भारत को स्वर्ग बनाया जाता है। बाय एक्शन नॉट बाय वर्ड्स। कर्म ही औरों को सुख देता है। अगर मेरा कर्म ठीक नहीं, मेरे कर्मों में भ्रष्टता है, स्वच्छता नहीं, मैं भी शांति से नहीं सो सकता हूं, औरों को भी शांति से सोना नहीं देता हूं। औरों का नींद कौन बिगाड़ रहा है? मेरी नींद कौन बिगाड़ रहा है? मेरे कर्म। तो उन सबके लिए संसार में रहते हुए ये बैलेंस रख सकते हो। घर में भी, घर में रहते हो, परिवार है, बच्चे है, बहू है, सब कुछ है, पति है, घर में भी आप शांति रख सकते हो। घर में सब कुछ रहते हुए भी सुख शांति आज भी रखे, भारत में थी, और वो ही आप ही है, दूसरे कोई ऊपर से नहीं आए थे, आज भी कर सकते हो। लेकिन करने के लिए ज्ञान चाहिए, भूल गए एक ही शब्द। अगर संसार में, आपके परिवार में, आज इस कलयुग में भी सुख शांति से रहना चाहते हो, एक बात सीखनी चाहिए बस। आपके व्यवसाय में कोई भी काम करते हो, उसमें भी स्वयं भी संतुष्ट, दूसरों को भी संतुष्ट करना चाहते हो, आपके चलन में, बोल में, कर्मों में, सब में बहुत कुछ नहीं चाहिए। सिंपल साधारण 3 बातों का अगर आप ध्यान दे दो, बहुत कुछ पढ़ना चाहिए। इसलिए कहते हैं ईट लेस डाइजेस्ट मोर। थोड़ा सा सुनो, करो, सुन के छोड़ना नहीं, अगर करो तो आप परफेक्शन पर पहुंच सकते हो, जो ऊंची मंजिल चाहिए। बहुत कुछ करना चाहिए लोग कहते हैं, लेकिन नहीं होता है इस कलयुग की दुनिया में। कम से कम क्या कर सकते हो आप? 3 काम कर सकते हो। अगर इन दोनों में बैलेंस रखना चाहते हो तो संसार भी में रहना है, कर्म भी करना है, स्वयं भी संतुष्ट रहना है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है, घर में भी सुख शांति होनी चाहिए, प्रोफेशन में जो काम करते हो वहां भी, जो भी आप काम करते हो नीट क्लीन एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं खाना बनाते एक दिन नमक ज्यादा हो गया, एक दिन कम हो गया, ऑफिस में कुछ काम करते गलत कुछ लिख दिया, 5 मिनट का काम 1 घंटा। इन सब के लिए 3 सिर्फ काम किया तो बस, तो करना चाहते हो कि सुनना चाहते हो। शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हो, मन को आत्मा को भी स्वस्थ रख सकते हो, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस दोनों हो सकता है। सिंपल 3 चीजों का कुछ उपयोग करना चाहिए मिनिमम। आइए मैक्सिमम बहुत कुछ है, नहीं जरूरत नहीं, ये मिनिमम अगर आपके आज की दुनिया में मनुष्य की कैपेसिटी है तो क्या वो कर सकते हो कि सुनना चाहते हो। सुनेंगे, सुनने के बाद क्या होता है, हम सुनते हैं सुन करके रख देंगे, ऐसा तो नहीं। हानी अभी आज सवेरे से बहुत कुछ सुना, तो बहुत कुछ सुन के आ गए लेकिन किया तो नहीं। देख लो सिंपल एग्जाम्पल बताऊं, आज सवेरे मुरली तो सुनी आप सबने पक्का, किसी से मुख से किसी को सुनाया नहीं, सुना रखा बंद करके पेटी में, दान नहीं किया है ना, किसी के मुख से बोला तो जरूर, किसी को सुनाया नहीं। ज्ञान दान करो का बढ़ता है ना। तो इसलिए कहा सिंपल 3 चीजें बताता हूं, अगर ये एक जीवन के लिए, एक दिन के लिए नहीं है, इस जीवन शरीर में जब तक रहते हो ये 3 काम को भूलना नहीं। अगर सिंपल मीन्स कोई इसके अंदर मेहनत नहीं, चलते फिरते करने वाली चीज, कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि दुनिया में देखते आज के दुनिया में कलयुग में 2 रोटी कमाने के लिए भी 8 घंटे 10 घंटे काम करना पड़ता है। पहले ऐसे नहीं था, मनुष्य के बाद बहुत समय था, अभी समय नहीं। ऐसे हेक्टिक वर्ल्ड में भी, बिजिएस्ट वर्ल्ड में भी हम इजी सिंपल से बैलेंस रख सकते हैं। एक उसमें से कि मनुष्य को अच्छे कर्म करने के लिए ज्ञान चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए रास्ते पर जाते हो, भारत की एक परंपरा दान करना चाहिए, गरीब है आपने दान किया तो एक शब्द जाना आपने, उसके पहले एक शब्द था वो भूल गए। दान करना है सब कुछ नहीं है, पात्र को देख के दान करना। अगर आपने दान किया उसने तंबाकू खाया शराब पिया, उस कर्मों का फल आपको भोगना पड़ता है। फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। आपकी भावना अच्छी थी, गरीब है आपने अच्छी भावना से दान किया तो भी उसका फल आपके ऊपर आएगा। तभी तो कहा देखो भीष्म पिता, अगर आपको चाहते हो भीष्म पिता को अंत में तीर की शैया पर सुलाया महाभारत के अनुसार। क्यों? उसने कहा मैं बचपन से आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया। तब श्री कृष्ण ने बताया बचपन में आप रथ चलाते थे, घोड़े गाड़ी, रथ के चक्के के नीचे सांप आया, आपका मन स्वच्छ था, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तुरंत रथ को रोका, सांप को उठा के बाजू में किया, रस्ते के बाजू में कांटे के झाड़ होते हैं, ये नहीं उनका लक्ष्य था, हिंसा नहीं करने जितना लक्ष्य, उठा के बाजू में किया, कहां गिरा वो कांटे के झाड़ पर। जितने कांटे उसको लगे थे उतने कांटे आज आपके शरीर को लग रहे हैं। हमने इतना जाना कि दान करना चाहिए, उसके पहले एक शब्द है पात्र को देखो, ये भूल गए। सीता को रावण क्यों लेके गया? सीता को पता नहीं था राम है कि ये रावण है कि साधु है। सीता कोई साधारण नारी थी, श्री राम की धर्म पत्नी, उनको भी पता नहीं चला, हमको कैसे पता चलेगा? तो कहा पात्र को देखने की दृष्टि है, वो भी चाहिए, वो भी आज को बताता हूं। भाई जी वो हमारे पास कभी आए, कैसे आएगा? आज, आज भी आप कर सकते हो। आप संसार में चलते हो आज कुछ नहीं करते हुए भी, आप भी वो परखने की शक्ति कहते हैं, दिव्य दृष्टि कहते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेशन पावर कहते हैं, बहुत नाम है। सिंपल भाषा में आप कर सकते हो, कोई भी आपके सामने आए ये कौन व्यक्ति है, आप परख करके फिर उसके साथ मिलो, बात करो, कर्म करो, जो चाहे करो, तो उसकी भी परखने की एक शक्ति है। उसको आज सिंपल भाषा में आप करके देखना, जब भी किसी से मिलते हो कोई भी हो उनसे मिलना चाहते हो, देखना चाहते हो, बात करना चाहते हो, संबंध रखना चाहते हो, ये कल ठक तो नहीं जाएगा, ये मुझे नुकसान तो नहीं देगा, ये दुख तो नहीं देगा, ये सारे प्रश्न हम बहुत कुछ सुना है, अंदर भरा है। तो इन सब का निवारण क्या है? सिंपल भाषा में एक चीज याद रखना, आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर भगवान आके ये पढ़ाता है, बच्चे संसार में रहो, एक स्मृति रखो, किसी के सामने जाने से पहले अपने को याद रखो, मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ये स्मृति में रखते हुए अच्छी तरह से दृष्टि दे दो, देखते रहो उसको, अगर दृष्टि नीचे ऊपर इधर उधर करता है तो समझना आंखों में कुछ काला है, दाल में कुछ कालापन है। ये दृष्टि को देखने की, दृष्टि देने की तरीका बताया आपको। आज कलयुग दुनिया में आपके पास कुछ भी नहीं, सिंपल एक स्मृति, एक स्मृति रखो, मैं कौन, ये याद रखना चाहिए, मैं सर्वशक्तिवान भगवान का बच्चा हूं। ये समझकर स्मृति में रखते हुए कोई भी आपके सामने आया संबंध संपर्क में, दृष्टि दे, देख लो उसको, अगर वो दृष्टि से दृष्टि मिलाता है, सब समझना योग्य व्यक्ति है। उसके आंखों में कोई दाल में काला नहीं, योग्य। अगर वो आंखें इधर हिलाता है, इधर उधर देखता है, तब समझना, इसको सिंपल ऑर्डिनरी लैंग्वेज में सुनाया कि परखने की शक्ति है ये, ऑर्डिनरी 1% है। इसको बढ़ाते जाएंगे आप, आपके पास और क्लैरिटी आएंगी, इवन उसके विचार तक आपको नोट कर सकेंगे आप, लेकिन अभी नहीं, अभी स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप है ये। क्या आप कहेंगे आज मैं क्या करूं, संसार में कितने लोग, किस किस प्रकार के लोग आते हैं, कितने लोगों से मिलना पड़ता है, कौन है, कैसे पता चलेगा, दरवाजा खोलो एकदम बंदूक दिखाए आपको, क्या कर सकते हैं आप? आज की दुनिया में अकेले रहते किस प्रकार की परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति में आज संसार में रहते हुए आपको पहले बताया बैलेंस, शांति चाहिए, तो कुछ टिप्स देना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं होगा, कुछ आपको पावर भी देना पड़ेगा ना। तो इसलिए एक विधि, किसी को देखते ही अच्छे तरह से देख लो, लेकिन देखने से पहले आपके अंदर वो स्मृति चाहिए, जैसे स्मृति वैसे दृष्टि, वैसे वृत्ति वैसे कर्म, ये साइकिल है। तो समझ में आया, एक दान करने से पहले परखने की शक्ति चाहिए, किसको दें, कैसे परखे, एक। दूसरा, संसार में कहा शांति होनी चाहिए परिवार में, एक शब्द याद रखो कि हमारे मुख से कभी भी ना नहीं आना चाहिए, अगर हां कहते हो हर बात में, उसमें भी व्यक्ति देख लो, हां करते समय भी भाई जी कहां कहां हां करे, व्यक्ति देख लो, परिस्थिति देख लो, व्यक्ति देख लो, परिस्थिति देख लो, हां कहां कहां करने चाहिए, और समय देख लो, इस समय कौन सा है। इन तीन चीजों को जानते हुए, बुद्धि में रखते हुए, संसार में घर में रहते हुए कभी ना शब्द नहीं करो, एक कुछ भी हो, हां जी देखना घर में परिवार में कैसे शांति होती है, कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, अपने आप शांति नहीं आएंगे, अपने आप परिवार में हरेक का स्वभाव संस्कार हरेक अलग अलग है, इन सबको ठीक करने के लिए कई बातों का ध्यान देना पड़ेगा, हमारे मुख से ना शब्द नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक बताता हूं कि देख लो, पति बच्चे कोई भी आते ऑफिस से आए, मम्मी मुझे चाय चाहिए, पति कहता है, आप कहेंगे दूध नहीं, ना किया शब्द निकल जाएगा, एकदम कुछ ना कुछ शब्द निकलेगा, पहले कहा हां जी, लेकिन दूध नहीं, चाय की पत्ती नहीं, फिर भी हां जी करो, और एक मिनट के बाद आप चाय पत्ती लाने के लिए जा रहे हो, दूध लाने के लिए जा रहे हो, कहां जा रहे हो, चाय बनाओ, कहा था दूध लेके आती हूं, अपने आप कहेगा नहीं चाहिए, अभी लेके आएंगे फिर चाय बनाएंगे, अपने आप ना कहेगा नहीं चाहिए। लेकिन संसार में अगर शांति रखना चाहते हो, हमारे मुख से ना शब्द नहीं, हां पोस्टपोन करो, वेट, क्यों क्या बाद में, पहले हां करना है, ये एक सीखना, इसके पीछे बहुत सारी शक्तियां है, वो अपने आप आ जाएंगे आपके अंदर। अगर आप प्रश्न पूछेंगे बहुत कुछ, ये ऐसी चीज है
इसके पीछे बहुत पावर्स है, वो अपने आप काम करेगा। जैसे बीज बोया अपने आप उगेगा, फल निकलेगा, ये बीज बताता हूं मैं। ओके, दो चीज हो गया। अब इस तरफ आओ, आपके कर्मों के अंदर कि जीवन में क्या होना चाहिए, जो भी कर्म करते हो वो नीट क्लीन एक्यूरेट होना चाहिए। उसके लिए दो तीन बातें हैं, आध्यात्मिक पावर भी चाहिए, शरीर सब कुछ नहीं, ये संसार बताए, इस संसार में आध्यात्मिक संसार में भी कुछ करना पड़ेगा। वीक माइंड कुछ नहीं कर सकता है, तो उसको पावरफुल बनाने के लिए एक चीज याद रखो, सवेरे उठते ही जैसे मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, मोबाइल 20,000-50,000 रुपए का है, अगर चार्ज नहीं करो वो काम का नहीं है, डब्बा ही है। तो उसको चार्ज करने लगाते हैं, शरीर को स्नान कराते हो, खाना खिलाते हो, चार्ज करते हो, आत्मा के लिए क्या करते हो, सिर्फ सवेरे उठते ही 5 मिनट, जब भी उठो आराम से बैठो, स्नान करने के बाद अपने आप से 5 प्रश्न पूछना, मैं कौन, बुद्धि जवाब देंगी। आप प्रश्न कर, मैं पूछता हूं भाई जी आपका नाम क्या है, तो आप जवाब देते हो। दो है अपने पास भी, दो है भारत, एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है, आत्मा की भी दो हाथ है। ये मन और बुद्धि को आपने जोड़ लिया, देखो सारा दिन आप जो भी काम करो वो काम देखना नीट क्लीन एक्यूरेट होगा। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, माता जी घर में खाना बनाती है, ऑफिस में काम करते हो, इंडस्ट्री में काम करते हो, गाड़ी चलाते हो, कोई भी काम, बैंक में पैसे गिनती करते हो, एक भी नहीं जाएगा। कर्मों में परफेक्शन लाना चाहते हो, एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता क्या है, कुछ भी नहीं, सवेरे उठते ही ये 5 प्रश्न अपने आप से पूछना, जवाब आएगा आपके पास है। एक मैं कौन, वेट, बुद्धि से जवाब आएगा। दूसरा मेरा रूप, वेट करना, बुद्धि से जवाब आएगा। तीसरा मेरे गुण कौन से है, आत्मा के साथ दैवी गुण और आसुरी गुण है, काम क्रोध लोभ मोह मेरे नहीं है, शरीर के है, हम नहीं चाहते हैं। आत्मा के अपने गुण है, उन गुणों को याद करो, मेरे गुण कौन से है आपको पता है। चौथा मेरे कर्म, मैं क्या करता हूं, इस ब्रकुटी में बैठकर देखना है तो आंखों से देखता हूं, बोलना है तो मुख से बोलता हूं, शरीर को चलाता हूं, ड्राइवर कार को चलाता है, कार अलग ड्राइवर अलग, पता है ये शरीर मट्टी से बन के आया, कल मट्टी में मिल जाएगा, मैं अलग हूं। पांचवा पूछो, मैं कहां से आया, ये 5 प्रश्नों का जवाब ढूंढना। जब तक एक एक प्रश्नों का जवाब नहीं मिला तब तक आगे नहीं जाना। एक पूछो मैं कौन, जवाब ढूंढो, जवाब आया आप संतुष्ट हो आगे जाओ, कुछ भी जवाब हो। दूसरा मेरा रूप, आप संतुष्ट हो आगे जाओ, नहीं तो पूछो मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, जब तक जवाब बताए। ये 5 प्रश्न है आपकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, दिस इज मेडिटेशन। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में राजयोग क्या है, डेवलप योर कॉन्सेंट्रेशन टू अचीव परफेक्शन इन योर प्रोफेशन, इन योर स्टडी, पढ़ाई में, प्रोफेशन में, हर कर्मों में। सारा विश्व कहता है व्हाट इज मेडिटेशन, एक्टिवेट योर कॉन्सियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्सियसनेस, वही बताए आपको, यही गायत्री मंत्र है। बहुत सारे भाषा में आए, मैं सिंपल भाषा में बताया साधारण। ये 5 प्रश्न अपने आप को भूलना, दिस इज मेडिटेशन। तीसरा एक काम करो कि इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही क्या गलत, तो उसके लिए ज्ञान के बिगर गति नहीं है। तो भगवान को कहा वो ज्ञान का सागर है। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अगर आप पूछते हो क्या भाई जी ब्रह्मा कुमारी आश्रम का ज्ञान सुनना चाहिए, स्वामी नारायण का, स्वामी विवेकानंद का भी ज्ञान है, स्वामी नारायण का भी है, और बहुत सारे आश्रम है, कुरान है, बाइबल है, गीता, वो भी ज्ञान है ना, हाँ उसके लिए चाहते तो मैं बताऊं, भगवान का ज्ञान, साधु संत महात्मा शास्त्र इन सब का ज्ञान में अंतर एक एग्जाम्पल बताता हूं। टाइम को भी देखना पड़ता है ना, हरेक का चावल का हंडे में एक ही चावल देखा जाता है, एक पक गया तो सारा पक गया है ना, सैंपल। तो यहां भी आपको एक सैंपल बताता हूं, भगवान का ज्ञान और मनुष्य के ज्ञान में अंतर, शास्त्र मनुष्य सब कुछ आ गया इसके अंदर। देख लो बहुत बड़ा पुराना, सब जगह पर एक वर्षन लिखा रहता है, आफ्टर रियलाइजेशन देयर विल बी अ चेंज. महसूस करने के बाद परिवर्तन होता है. ये बहुत पुराना महावाक्य है. गवर्नमेंट ऑफिस, जजेस, कोर्ट, सब जगह जाओ, सब जगह है. तो आप मानते हो सही है ये? महसूस करने के बाद परिवर्तन होता है, राइट? हाँ, ये रॉन्ग है. इसके अंदर दो शब्द मिस हुआ है, क्योंकि मनुष्य के महावाक्य है. तो मनुष्य ने जो कुछ किया उसके अंदर कोई ना कोई कमी है. इसके अंदर दो शब्द मिस हुए हैं. आप किसी को भी पूछ रहे, सब कहेंगे एक्यूरेट है, एब्सोल्यूट राइट कहेगा. मनुष्य मनुष्य को, तो भगवान के ज्ञान और मनुष्य के ज्ञान में अंतर बताता हूं. एक दो शब्द मिस, हम महसूस किया, हमने बचपन से सुना है गुस्सा नहीं करना चाहिए. अभी भी गुस्सा गया? कोई गुस्सा करना चाहते हो? न चाहते हुए, समझते हुए भी महसूस किया परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके बाद भी दो काम करना होता है. महसूस करने के बाद विधि पूर्वक अभ्यास चाहिए. डॉक्टर ने बीमारी समझ के आपको दवाई दिया, लेकिन दवाई लेने की विधि चाहिए. ये खाली पेट लेना चाहिए, ये खाने के बाद लेना चाहिए, विधि डॉक्टर बताएगा. विधाता चाहिए. मेडिकल स्टोर में जाओ, दवाई मिल सकती है आपको सिर दर्द की. लेने की विधि डॉक्टर से पूछना पड़ता है, उसके पर लिखा रहता है एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. तो यहां भी ज्ञान दुनिया में बहुत कुछ है, विधि कौन बताएगा? और विधि के अंदर सिस्टमेटिक विधि से लेते हो तो परिवर्तन दिखाई देता है. विधि पूर्वक अभ्यास, तो ये दो शब्द मिस हुए. सिस्टमेटिक एफर्ट विल ब्रिंग चेंज आफ्टर रियलाइजेशन. महसूस करने के बाद विधि पूर्वक अभ्यास परिवर्तन कराएगा. ये मनुष्य महावाक्य के अंदर भगवान की क्लैरिटी चाहिए, तब भगवान को ज्ञान का सागर कहा. तो वो आके जो ज्ञान सुनाता है तो उसमें से उसको यहां मुरली कहते हैं. एक शब्द बहुत ज्ञान नहीं चाहिए, वन ड्रॉप ऑफ पॉजिटिव थॉट. भगवान के एक बूंद के प्यास है. आपके जेब में 8-10 दिन, सदा नहीं, 8-10 दिन कम से कम, कल से एक जो आपको मुरली सुनते हो, ज्ञान सुनते हो, सुनने के बाद जो आपको अच्छा लगा, एक मुरली के पॉइंट आपके जेब में होना चाहिए. 8-10 दिन, सदा नहीं. और 3 दफा शरीर को खाना खिलाते हो, 3 दफा अपने आप को, जब खाना आते ही कहते भगवान को याद करके खाना खा लो. खाना आते ही भगवान ने मुझे क्या कहा था, पढ़ो खाना खा लो. ये जो लिख के रखा याद नहीं रहता है, ये खाना है बुद्धि के लिए और ये खाना शरीर के लिए. सवेरे, दिन में, शाम को, रात. सवेरे खाना खा, एक ही पेट है, दो नहीं है, शाम को भी भूख लगती है ना. तब कहा हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, स्वस्थ आत्मा को रखने के लिए 3 दफा खाना चाहिए उसको. ज्ञान पॉजिटिव थॉट्स है, इट इज अ पावर, इट इज अ फूड. ये एक काम करना चाहिए. तीसरा और एक है, लास्ट, और एक काम करो कि दुनिया में लोग कहते हैं जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं करेगा. क्या आपके साथ भगवान आके रहेगा? उसको अपना डर है, आपके पास क्यों रहेगा? हाँ, आप रख सकते हो उसको. कैसे रखेंगे? भक्ति में देखा आपने, रास्ते पर चलते हैं राम 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 करते जाते हैं. क्यों? कि मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए. मुख में भगवान का नाम रहे, प्राइमरी लेवल भक्ति. यहां आध्यात्मिक ज्ञान है. आत्मा मन में किसी को देखकर गलत विचार नहीं आना चाहिए. गीता में कहा अधम ते अधम महापापी है, बहुत खराब है. और एक पत्थर मना चाहिए? नहीं, उसका भी कल्याण करना चाहिए. आज भी मुरली में सुना, बिगड़ी को बनाने वाले चाहिए, खराब व्यक्ति को अच्छा करना. क्या कर सकते हैं आप? आपके पास कुछ है? कुछ भी नहीं है. बहुत दुख देता है, बहुत गुस्सा करता है, क्या है आपके पास? क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर. लेकिन आप किसके बच्चे हो? भगवान आपके साथ है. इनको देखते ही हर एक घंटे में 60 मिनट है, कम से कम वन ड्रॉप ऑफ पॉजिटिव थॉट. एक घंटे में एक व्यक्ति को, किसको देखते ही शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण करो. शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसको सदा सुखी बनाओ. कितना दिन आप खाना देंगे, गरीब को कितना दिन भीख मांगने सिखाएंगे आप, हमारे पास रोज आओ मैं हम देती हूं, कितना दिन देंगे आप? हमने बनाया औरों को भिखारी, किसी को बिकने चाहिए? शुभ विचार दे दो, थॉट्स दे दो, और वो आप नहीं, भगवान का बच्चा है, हरेक भगवान ये आपका बच्चा है, इसका आपने कल्याण करना चाहिए, आपने शांति देना चाहिए। किसी को भी देखते ही आप कुछ देते नहीं हो, लेकिन इनको देखते इनके विचार मेरे मन में नहीं आना चाहिए। आई हैव टू प्रोटेक्ट माय माइंड, क्योंकि मन सारी बीमारियों दुखों का कारण है। मन जीत जगत जीत कहा, तो ये विधि बताया कि मन के अंदर गलत चीज न हो, कि सारी बीमारी दर्द दुख सबका कारण मन है। मन को जीतने के लिए किसी को भी अच्छा हो खराब हो देखते ही आप मन में अच्छे विचार करो। आप कहेंगे भाई जी मैं नहीं कर सकता हूं, मुझे इन्होंने बहुत दुख दिया, आप नहीं करो, लेकिन आप बताने में क्या तकलीफ है आपको? आपके जेब से तो कुछ जा नहीं रहा है। भगवान ये आपका बच्चा, इसका आप सुधार करो, इसको आप संभालो, इतना तो कर सकते हैं ना। ठीक है, ये नंबर वन, अपने बचाव के लिए अपने मन को खराब नहीं करना। अपने सफेद कपड़े, भाई जी ने प्रश्न पूछा, उसका जवाब, आपने अगर सफेद कपड़े पहने कहीं भी बैठो याद रहता काला नहीं लगना चाहिए, कल धोना है। रंगीन कपड़े पहना कहीं भी बैठो लगेगा, कोई चिंता नहीं है, दिखाई नहीं देता है। इसके लिए जैसे अंदर सफाई चाहिए, बाहर भी, अंदर और बाहर दोनों स्वच्छ हो, ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पवित्रता। इंटरनल फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी। किसी ने शादी नहीं किया उसको पवित्रता नहीं कहते हैं, वो ब्रह्मचर्य है। भारत में कितने लाख साधु संन्यासी है, वो सत्य में नहीं आएंगे। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पवित्रता क्या है? फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी। शरीर स्वच्छ नहीं तो किसी के बाजू में बैठो, जो मोजा पहनते हैं पसीना आता है, वॉकिंग करते हैं बास आती है, पसीना निकलता है, किसी के बाजू में बैठो नहीं। देवताओं का शरीर स्वच्छ सुगंध, मन के अंदर अच्छे विचार, चाहे कोई भी हो, किसी आपके नजदीक भी कोई जाता है, अरे ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, इनके बाजू में बैठते अच्छी फीलिंग आ रही थी, है ना, फिजिकल एंड मेंटल दोनों। तो ये स्वच्छता के लिए शिव बाबा ने आके ये वस्त्र बताया कि ड्रेस, इट इज अ यूनिफॉर्म, नहीं पहनो कुछ कंपलसरी नहीं, वो आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप देखो सफेद कपड़े स्नान, एक दिन कोशिश करो स्नान करो और कल पहने हुए कपड़े पहनो, और एक दिन स्नान करो प्रेस करके, पहले फटे हुए भी हो प्रेस करके रखे वो पहनो, यू फील फिजिकल एंड मेंटल क्लीनर, फ्रेश लगेगा देखना करके। सो दिस इज प्यूरिटी, इसके लिए यहां ये व्यवस्था है। ये तीन बातों को अगर आप याद रखते हो, एक कर्मों में कुशलता चाहे, चाहे खाना बनाओ झाड़ू लगाओ ऑफिस में काम करो, उसके लिए पांच प्रश्न, दिस इज मेडिटेशन, ये भूलना नहीं। अगर कर्म श्रेष्ठ के कर्मों से भारत को स्वर्ग बनाएंगे आप, पैसे से नहीं और किसी से नहीं। दूसरा, हरेक के प्रति, कोई कैसा भी हो भगवान का बच्चा है, कोई रावण का नहीं, देखते ही उनके प्रति शुभ सोचो, प्रोटेक्ट योर माइंड, मन स्वच्छ हो कि ये सारी बीमारी दुखों का कारण, माइंड इज रूट कॉज। तीसरा, कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए तो ज्ञान के बिगर गति नहीं। तो एक महावाक्य आपके जेब में रहना चाहिए, आठ दिन, उसके बाद आदत बन जाएंगी। कुछ भी अगर किसी कारण आप सेंटर में नहीं गए, फोन करके सेंटर से पूछना, बहन जी आज के एक मुरली के पॉइंट सुनाना, नोट कर, सुनिए हमने, याद नहीं रहती है, इसलिए आठ दस दिन लिख करके आदत डालो, फिर अपने आप आदत बनेंगी। ठीक है, और कुछ, दोनों में बैलेंस हो गया? हाँ, ओम शांति।
शांति। हम आदरणीय रामनाथ भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे।
गायत्री अम्मा नहीं आई?
आई है। हमने देखा सारे भारत में एक ही सेंटर इतने स्टूडेंट, तो एक एक जोन होता है, एक सेंटर को इतना नहीं देते स्टूडेंट, क्यों जो एक ही गाय कुलाबा है एक ही सेंटर से इतने भाई बहन आए तो ये साधारण काम नहीं है ना। एक बहन जी का मोहिनी बहन और गायत्री बहन मेहनत करते ना, और आप लोगों को भी जानना चाहिए आप अगर अच्छा गायत्री अम्मा पीछे बैठी है, माता जी तो आगे बैठना चाहिए, अम्मा को तो आगे बैठना चाहिए, आप पीछे बैठे क्या बात है। तो देख लो दुनिया में भी क्या कहते हैं, दुनिया में भी कहते लोग क्या कहते हैं कि आप करोड़पति भी बन जाओ, धन संपत्ति जाते से हम कुछ ले जाएंगे, आप सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन एक चीज आपके पास जाएंगे जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आके थोड़ा सा ज्ञान सुनते हो, तो ये ज्ञान के बिगर गति नहीं, ये ज्ञान हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाएगा। तो ज्ञान को अग्नि कहा, ज्ञान को गंगा जल कहा, ये पाप को मिटाता भी है। तो इसके लिए 24 घंटे आप काम करो, 23 आवर्स जो चाहे करो आप, लेकिन 5 मिनट ज्ञान जरूर सुना, चाहे सवेरे चाहे शाम को। यही हमारे जीवन को जवन की अमानत है, ये आपके साथ जाएंगी कि ये आत्मा की अमानत है, शरीर के लिए नहीं। आत्मा अविनाशी है, तो ये अविनाशी ज्ञान आपके साथ जाएगा, समझ। तो उसके लिए 24 घंटे आपके पास है, पेट के लिए जीवन के लिए 24 घंटे काम करना है, 23 घंटे आपके लिए, 5-10 मिनट सवेरे 5-10 मिनट शाम को, नहीं हो सकता है हफ्ते में एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हफ्ते में एक दफा तो आकर के ज्ञान सुनना चाहिए, यही आपकी अमानत। जाते समय आप क्या ले जाएंगे ये आपके साथ जाएगा, ऐसे मैं समझता हूं, फिर भी आप सोच लीजिए। ओम शांति।
धन्यवाद भ्राता, आपने अच्छे तरह से हमें मार्गदर्शन किया।